نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے اہلا وسہلا مرحبا ان سب لوگوں کو جو قرآن کے سفر کے لیے آج تیار ہو کے بیٹھے ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفوان بن اسال حاضر ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سرخ چادر لے کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو مبارک ہو. طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، اور طالب علم سے محبت کی وجہ سے اوپر تلے قطار بنائے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرحبا فرماتے تھے. تو اسی وجہ سے آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، اہلا وسہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آج میں نے آپ سے آج کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ دو نفل پڑھ کے آئیے گا کلاس میں، کیونکہ ہماری پہلی کلاس ہے. بہت سارے لوگ جوش میں ایک فارم فل کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید فارم فل کر دینا ہم نے پوری اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، ذمہ داری ادا کر دی. حالانکہ فارم فل کرنا ایک پہلا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد بے شمار قدم ہیں جو اٹھانے پڑیں گے منزل تک پہنچنے کے لیے. آج جب میں نے دو نفل ادا کیے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے اشارے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، دنیا کی طرف سے بھی بہت رکاوٹیں آتی ہیں، اور شیطان مردود تو ہمارا دشمن، وہ تو بیٹھا ہی ہوا ہے ہمیں بہکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ لیتے ہیں شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اور انسانوں کے وسوسوں سے. کہ انسان بھی، جو شیطانی قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب ایک انسان اللہ کے راستے کی طرف آنے لگتا ہے، قرآن کی طرف آنے لگتا ہے. ہم نے دو ہفتے پہلے الحمدللہ اپنا پچھلا کورس مکمل کیا، جس میں سورۃ الناس پہ ہم نے بات ختم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پڑھ کے بھی یہ نہ سمجھنا کہ مکمل ہو گئے، تب بھی تمہیں اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. یہ پورا راستہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا، اس کے بعد اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان اور تیزی سے تم پر حملے کرے گا. اور آج شروع کرتے وقت بھی ہم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ ملے گی شیطان مردود سے، کیونکہ اس کے حملے اور تیز ہو جائیں گے جب وہ دیکھے گا کہ آپ ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم کے راستے پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سوچ کو بدل دینے والا ہے، عمل کو بدل دینے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پہ جما دے، کیونکہ اس کی ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پناہ اتنی مضبوط ہو، شیطانی اور انسانی شیطانوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھ سکے. اور وہی ہے جس کی توفیق سے تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو کوئی کام نیکی کا ہم مکمل نہیں کر سکتے. یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کم ہمت ہیں، अल्लाह तो हमें इस रास्ते पर जमा देना, मजबूत कर देना, हमारे कदमों को साबित रख देना, हमारे कदमों को जमा देना, हमारी मदद फरमाना, हमारे लिए आसानियां फरमा देना। और जैसे जैसे हम ये सफर तय करें, हमारे अमल में वो तमाम आयात आ जाए जो जो हम पढ़ते जाए। ए अल्लाह, इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना देना, कयामत के दिन ये हमारे हक में सिफारिश ही खड़ा हो। ए अल्लाह, हमने पहला कदम तेरी तरफ बढ़ाया, तेरे कलाम की तरफ बढ़ाया। ए अल्लाह, तो हमारे कदमों को साबित रख, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे कदमों को साबित रख। हमारी आखरत की मंजिल इसकी वजह से आसान कर देना, हमारे लिए जन्नत का रास्ता इसकी वजह से आसान कर देना। अल्लाह, तेरे प्यारे कलाम को तू ही दिलों में उतार सकता है, किसी और में ये ताकत नहीं, ये तेरा कलाम है। तेरी दीवी तौफीक के बगैर हम इस रास्ते को अबूर नहीं कर सकते, ये बड़ा भारी कलाम है, तो हमारे दिलों में इसको उतार देना, हमारे सीनों को इसके लिए खोल देना। अल्लाह, हमें जमा देना, अल्लाह हमें जमा देना अपने रास्ते पर। अल्लाह, हमारे इस अमल को हर रियाकारी से महफूज रखना, अल्लाह हमारे इस अमल को हर बदनीयती से महफूज रखना, अल्लाह हमारे इस अमल में इखलास अता फरमाना, हमारे लिए इसका सीखना, इसका समझना, इसके साथ वक्त गुजारना, इसके ऊपर अमल करना, इसके रास्ते में मेहनत करना आसान फरमा देना। कि तेरी दी हुई तौफीक की हमें जरूरत है, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा, इसके लिए बैठना यहाँ पे हमारे लिए आसान फरमा दे, हमें हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखना, अल्लाह हर किस्म के वसवास से इस रास्ते में महफूज रखना। अल्लाह, तो हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें अपनी पनाह में ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो इस कुरान को सीखे और सिखाए। तो इस दुनिया में जो बेहतरीन लोग हैं, आज आप उनमें शुमार हो गए, क्योंकि आज आप कुरान सीखने का सफर शुरू करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताबी अक़वामन, अल्लाह ताला बेशक इस किताब के जरिए कौमों को उरूज अता फरमाता है, व यदाऊ बिही आखरीन, और अल्लाह ताला इसको तर्क करने की वजह से कौमों को जलीलो ख्वार कर देता है। तो इसी कुरान के जरिए लोगों को बुलंदी हासिल होती है, इज्जत हासिल होती है, और इसी कलाम को छोड़ने की वजह से लोगों को जवाल और पस्तियां और जिल्लत उनके लिए लिख दी जाती है। इसीलिए इलामा इकबाल ने कहा था कि वो जमाने में मुअज्जत थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तुमने कुरान को छोड़ा है तो तुम ख्वार हो गए हो, ये कुरान को छोड़ने का नतीजा है कि आज दुनिया में तुम जलीलो ख्वार हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूनुस में, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास मौइज़ा, नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, वशिफाउन, और शिफा, लिमा फिस सुदूर, उसके लिए जो सीनों में, वहुदं व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? नसीहत है रब की तरफ से, इसमें शिफा है सीनों के लिए, इसमें हिदायत है, और इसमें रहमत है ईमान वालों के लिए। कितनी सारी चीजें हैं ना आपके लिए, कितनी बड़ी खैर है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कह दीजिए ए नबी, आप कह दें कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और इस रहमत पर खुश होना चाहिए। हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन, ये हर उस चीज से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। तो इस रहमत पर जिसकी तरफ आज आप कदम बढ़ा रहे हैं, इसका ऊपर आपको खुश होना चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आप अल्लाह के इनाम की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया रहमा, हुदा, शिफा, मौइज़ा, ये सब इसके ही नाम है, इस कुरान के, اس کی طرف آج آپ بڑھ رہے ہیں. تو یہ معجزہ کیسے ہے؟ واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو جب دل نرم ہو جائے تو یہ قرآن ان میں جذب ہو جائے گا. تو یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. اسی طرح جو باطنی بیماریاں ہیں, تکبر ہے, حسد ہے, حب دنیا ہے, حب مال, حب شہرت, اس کا بھی علاج ہو جائے گا. پھر یہ ہدایت ہے, یہ تمہیں راستہ بتائے گی کہ تمہیں کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا, کون سا راستہ ایسا ہے جو تمہارے رب کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا ایسا راستہ ہے جو تمہارے رب کو ناراض کر دے گا. اور آخرت میں رحمت ہے, دنیا میں بھی رحمت ہے, آخرت میں بھی رحمت ہے. تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں یہ عطا کیا ہے. تو خوشیاں منانی ہوں تو اس کی خوشی مناؤ, اور جان لو کہ جو کچھ دنیا میں تم جمع کر رہے ہو, ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے قیمتی چیز آج تم کو مل رہی ہے, اور وہ ہے یہ قرآن عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رحمان علم القرآن. رحمان اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اس نے تمہیں قرآن سکھایا. سارے علوم اللہ ہی نے سکھائے ہیں, لیکن چوٹی کا علم جو ہے, ٹاپ کا علم جو ہے, وہ ہے علم قرآن. اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی کہ یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو قرآن جیسا علم عطا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے جو آج آپ کی طرف آ رہی ہے. تو خود قرآن پڑھیں, سیکھیں, اور اس کے بعد اس کو آگے سکھانے کی فکر کریں, اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں. اس کو صرف ناظرہ پڑھ لینے تک اکتفا نہ کریں. صرف یہ نہ سوچ کے آئیں کہ ہم نے اس قرآن کو ٹیکسٹ سیکھنا ہے, یا کوئی لوگ یہ سوچیں گے ہم نے صرف ترجمہ سیکھنا ہے. نہیں, آج یہ نیت کریں کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے, میں نے ایک نیا انسان بننا ہے. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی اتنی زیادہ عظمت ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا, وہ پہاڑ خشیت سے, اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنا عظیم کلام ہے, اتنا عظیم کلام ہے. تو جو دلوں پہ جب نازل ہوتا ہے نا یہ قرآن, تو دلوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے, انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ایک نیا انسان بنا دیتا ہے. اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, ایک نیا انسان بنتا ہے. یہ اس طرح انسان کو ٹرانسفارم کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کی زندگی بدل گئی. تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے وہ دب جاتا, پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے. تو آج دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ قرآن اترتا ہے, کیونکہ واقعی ہماری زندگیوں میں تو آج ہی اتر رہا ہے نا. ہم جو اس سے پہلے ناواقف تھے, ہم نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے, ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور آج ہم تک پہنچ رہا. تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ تو دب جاتے, پھٹ جاتے. دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے دل دب جائیں گے اس قرآن کے آگے, پھٹ جائیں گے اللہ کی خشیت سے, آنسو بہنے لگیں گے. تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں, ہم اللہ کے آگے دب جائیں, ہمارے دل دب کے, ٹوٹ کے اور نئے دل بنیں. اور سب سے بڑا مقصد کہ ہم ربانی بن جائیں, رب والے بن جائیں. ولیکن کونوا ربانیین, لیکن تم ہو جاؤ ربانی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ آل عمران میں. ربانی کون ہوتے ہیں؟ رب والے, رب والے, جس جو رب کو ٹوٹ کے چاہنے والا ہو, جس کے دل میں رب کی محبت ڈیرے لگا لے, چھا جائے, سارے دل کو کور کر لے, جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں, چاہنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی بنا دے. تو قرآن سے ایسا جی لگانا ہے کہ اندر ٹوٹ پھوٹ کے ہم اب ربانی بن جائیں، اندر ایک حرارت محسوس ہونے لگے، اب دنیا والے نہیں اب رب والے کہلائیں، اب کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ربانی جا رہا ہے، رب والا. انشاءاللہ تعالی اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کرنا ہے، پہلی باتوں سے، پہلے تصورات سے، جو ذہن میں پہلے کچھ عقیدے ہیں، کچھ ماں باپ کی طرف سے یا آبا و اجداد کی طرف سے جو ڈالے ہوئے ہیں وہ ہیں، ان سب سے الگ ہو کے، خالی اس ذہن ہو کے اس قرآن کی طرف آنا ہے کہ اب یہ قرآن جو کچھ مجھے دے گا میں نے لیتے جانا. دیکھیں، اگر آپ پچھلے تصورات، پچھلی معلومات یہ لے کر آئیں گے تو جس بورڈ پہ پہلے سے کچھ لکھا اس پہ تو کچھ لکھنا مشکل ہے. آپ کب نئی تحریر لکھ سکتے ہیں کسی بھی بورڈ پہ؟ جب وہ صاف ہو، ہے نا؟ تو جب صاف ہوتا ہے تو نئی تحریر لکھی جاتی ہے، لیکن جب پہلے سے کچھ لکھا ہو، پہلے سے مائنڈ بنا کے آئے ہیں کہ ہم نے نہیں بدلنا، ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا، جو لکھا ہوا ہے پہلے سے وہی لکھا رہے گا، تو پھر یہ قرآن دل میں جذب نہیں ہو سکے گا. جب یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں ہم تو آبا و اجداد کے ہی دین پر رہیں گے اور اسی پہ چلیں گے، تو پھر یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا. یہ نیت کرنی ہے کہ جو جو قرآن کہتا جائے گا، جیسے جیسے کہتا جائے گا، میں ویسے ویسے چلتی جاؤں گی. تو دنیا میں تو یہ کیا دیتا ہے؟ دنیا میں یہ انسان کو بہترین انسان بنا دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی ہے کہ جو سب سے بہترین وہی ہے جو کیا ہے، جو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا. اور اس کے بعد قرآن کا علم کیا دیتا ہے؟ جنت میں کیا دے گا؟ ایک تو جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علم والے ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. وہاں قرآن کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے معنی پہ بات ہوگی. وہاں اللہ تعالی جو علوم کا فیضان فرمائے گا، اس میں وہ اس طرح ڈوب جائیں گے کہ ان کو ساری جنت بھول جائے گی. جو مزہ وہ وہاں پائیں گے، ساری جنت اس مزے کو جان ہی نہیں سکتی. تو یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی صرف سن لینے سے، یا صرف سرٹیفکیٹ لینے سے، یا صرف قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو جانے سے. یہ تو چلتی رہتی ہے، یہ تو وہ سمندر ہے جس میں جتنا غوطہ لگانا چاہیں اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے پانچ حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر ہیں. سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، یعنی اس پہ ایمان لانا. دوسرے، اس کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کی جائے، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح زیر زبر کی غلطی کے بغیر، اور اسے سمجھا جائے جیسے سمجھنے کا حق ہے. اور وہی سمجھنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، یعنی اس کی آیات کو سیکھنا، سمجھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ کیا تالے لگ گئے؟ اور اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جیسے عمل کرنے کا حق ہے. لیکن جو بندہ سیکھے گا تو عمل کرے گا نا. جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کیسے اس کے اوپر عمل کر سکے گا؟ جو جانتا ہی نہیں کہ یہ کون سا راستہ دکھا رہا ہے، وہ کیسے عمل کرے گا؟ پھر پانچواں اس کا حق یہ ہے कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए, इसको फैलाया जाए, इसको आम किया जाए। और अगर ये हकूक अदा नहीं करते हम तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है अगर ना अदा करें। याद रखें, कुरान पाक के हकूक को अदा ना करने वाला कुरान को छोड़ देने के बराबर है। क्या सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया, وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا, और पैगंबर कहेगा यानी قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, اے میرے رب میری قوم نے اس قران کو چھوڑ رکھا تھا, اے اللہ انہوں نے اس قران کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت فرمائیں گے, اور اس کو چھوڑنا کیا ہے, इसको छोड़ना क्या, हम सोचते हैं कि हमने तो नहीं छोड़ा, इसको छोड़ना ये है अगर कोई इसकी तस्दीक ना करे, अगर कोई इसमें गौर व फिक्र ना करे, अगर कोई इस पर अमल ना करे, इसकी तिलावत ना करे, इसकी सही तौर पे किरात की तरफ तवज्जो ना करे, इसको छोड़ के दूसरी लगवियात में मसरूफ रहे, हकीर चीजों की तरफ मुतवज्जे रहे। ये सब सूरतें दर्जा बदर्जा कुरान को छोड़ने के तहत इसके हुक्म में दाखिल होती है। ये सब कुरान को छोड़ना है। इंसान दूसरी चीजों में तो बहुत टाइम लगाए, आप रिसाले भी पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पे भी ब्राउजिंग करते हैं, आप फेसबुक पे भी होते हैं, आप टीवी भी देखते हैं, ड्रामे फिल्में वो सब चीजें, लघवियात के अंदर तो आपका बहुत वक्त गुजरता है और उसमें तो वक्त का एहसास भी नहीं रहता। लेकिन कुरान की तरफ आना यह मुश्किल लगता है, इसके लिए बैठना मुश्किल लगता है, इसके लिए वक्त लगाना मुश्किल है। तो बहसियत मुसलमान हम पर कुरान पाक के जो भी हकूक आयद होते हैं अगर हम इनको अदा नहीं करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल और इस फरियाद का इतलाक हम पे भी होगा। यानी ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ मुद्दई की हैसियत से कयामत के दिन खड़े होंगे। इसके बावजूद लोगों को आज इसकी अहमियत नहीं है, इसके सीखने की, इसके पढ़ने की सही, इसको आम करने की, इस तरफ तवज्जो है ही नहीं, इस पर अमल करने की इसको जरूरत समझा ही नहीं जाता। तो उनको सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 दिखा दें ताकि ये सब के ऊपर जाहिर हो जाए कि कुरान पाक का सीखना, इसका समझना कितना जरूरी है और इसको छोड़ना क्या है। हम सब ने इसको छोड़ा हुआ था आज तक, आज इसको थाम ले और ऐसे थामे कि जिंदगी भर फिर इसका साथ नहीं छोड़ना। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं और इसको कुरान पाक में दो मकामात पे कुरान पाक के हकूक अदा ना करने वाले को कहा गया है कि ये कुरान की तकजीब करते हैं। याद रखें, जो ये हकूक नहीं अदा करता ना, आप लाख समझ लें कि आप कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर आप इसके हकूक की अदायगी अपनी ताकत के मुताबिक, जितनी आपके अंदर इम्कानी हद तक आपकी ताकत है, जितनी आपकी कुव्वत है, अगर आप वो इसमें सर्फ नहीं करते इसके हकूक अदा करने में, तो असल में आप कुरान को झुटला रहे हैं, इसको इसकी तकजीब कर रहे हैं। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में फरमाया, उन लोगों की मिसाल जो तौरात को उठाने वाले थे फिर उन्होंने इसकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया तो उस गधे की तरह है जो किताबों का बोझ उठाए हुए हो। यानी फिर तो किताब उनके लिए ऐसे ही है जैसे एक गधे ने बोझ उठाया। अगर हम कुरान पाक के हकूक अदा नहीं करते ना, तो ऐसे ही है जैसे हमने कुरान का बोझ उठाया हुआ है, क्योंकि गधे को उसके ऊपर जो भी लादा जाए वो उसको कुछ फायदा नहीं देता, उसको पता ही नहीं है मेरे ऊपर क्या लादा हुआ है। चाहे आप सोने की ईंटें उसके ऊपर लाद दें या पत्थर लाद दें, उसको क्या, उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे कुछ बोझ उठाया हुआ है। तो यही हमारा हाल है कि अगर हम कुरान की तरफ नहीं आते, इतनी अजीम किताब, इतना अजीम कलाम हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उस गधे की तरह ही हैं कि इसको पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी रहमत है। उसके लिए जहां और उलूम है, जहां और किताबें पढ़ी हुई हैं बेशुमार उसके बुकशेल्फ में, वहां एक ये भी सही, बस इसके अलावा इससे ज्यादा उसके पास इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर दूसरी आयत सूरह वाकिया के तीसरे रकू में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला उकसिमु बिमवाकिन नुजूम, ये आयत 75 से लेके 82 तक बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मवाके की, और अगर तुम समझो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है, इन्नहू लकुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून, ये महफूज किताब में सख्त है, जिसे पाक छूते हैं, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है, तंजीलों में रब्बुल आलमीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कलाम आया है। अफा बिहाजल हदीस अंतुम मुदहिनून, फिर क्या इसके कलाम के साथ तुम बेएतनाई बरतते हो, इससे बेतवज्जोही करते हो, इसको कोई अहमियत का हामिल नहीं समझते, इससे दूर भागते हो, इसकी वर्थ नहीं समझते, इसको तवज्जो के लायक नहीं समझते। तुम्हारी तवज्जो के लायक हर दूसरी चीज है, क्या ये कुरान ही नहीं है? वतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और क्या तुम अपना हिस्सा इसमें यही रखते हो कि तुम इसको झुटलाते हो, यानी क्या तुम्हारा हिस्सा यही है इसमें कि तुम इसकी तकजीब करते हो, और तकजीब इस माने में भी है कि कुरान का इनकार किया जाए, और इस माने में भी तकजीब है कि इसकी जिम्मेदारियों को अदा ना किया जाए, कि फिर तुम्हारा हिस्सा सिर्फ इतना ही है कुरान में? सोचिए आपका हिस्सा क्या है इस कुरान में, सिर्फ इसको बेसोचे समझे पढ़ लेना, और वो भी 90% लोग सही पढ़ना नहीं जानते, तो पढ़ने का भी हक अदा नहीं होता, उससे आगे सीखना और समझना तो दूर की बात है। तो क्या इस कलाम से तुम सुस्ती बरतते हो, क्या तुम इसकी नाकदरी करते हो? ये नाकदरी तो है कि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा कलाम हो, उसकी बात हो मेरे बुक शेल्फ में पड़ी हुई, और मैं कहती हूँ, कहती फिरती हूँ मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मैं उसकी बड़ी मोहताज हूँ, और फिर उसके कलाम को उसकी बात को मेरी इतनी भी तवज्जो ना मिले कि मैं चंद घंटे जिंदगी के चंद अय्याम, आधी जिंदगी तो पता नहीं गुजर गई कि आधी भी है कि नहीं है, जो रही सही जिंदगी है बच गई, वो मैं इतनी इस काबिल नहीं समझती इस कलाम को कि मैं इसको तवज्जो दूं, मैं इसकी तरफ अपना रुख कर लूं। अब तो कह दूं कि बस हो गई, बहुत दिन दे दिए दुनिया को, बहुत साल दे दिए, अब तो मैं इस कलाम की तरफ आऊं, क्या ये कलाम इस काबिल नहीं है? क्या मेरा यही हिस्सा है इस कलाम में कि मैं इसको झुटलाती रहूं, इसकी जिम्मेदारियां पूरी ना करूं? तो अल्लाह ताला हमसे इस कुरान की जिम्मेदारियों को पूरा करवाए, अल्लाह ताला इसके तमाम हकूक अदा करने वाला हमें बना दे। तो इंशाल्लाह ताला आज जो सफर शुरू करना है, अल्लाह ताला से मदद मांग के करना है, अगर दो नफल नहीं अदा किए तो अब करने हैं, और दो नफल अदा करके सजदे में जाएं, और अल्लाह ताला से तहे दिल से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस कलाम को आपके दिलों में उतार दे। अल्लाह ताला इस कलाम का हक अदा करने वाला बना दे, इससे हमारा तजकिया कर दे, हमारे अंदर बाहर को पाक साफ कर दे, हमारा जाहिर बातिन इसके जरिए पाक हो जाए। ये वो कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पाक में माहिर होगा वो मुअज्जज और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ रहता है, उनके साथ होगा कयामत के दिन। सोचें, फरिश्तों के साथ, और कौन से फरिश्तों के साथ? जो बड़े बाइज्जत हैं, बड़े बुजुर्ग फरिश्ते हैं, उनके साथ होगा जो इसका माहिर बनेगा। तो कौन कौन इसका माहिर बनना चाहता है कि वो फरिश्तों का साथ चाहे, ऐसे फरिश्तों का। और जिस शख्स को कुरान मजीद पढ़ने में दुश्वारी होती है, अटक अटक के पढ़ता है, तो उसको दो अजर मिलेंगे। ये बुखारी की हदीस है कि दोनों ही लोग, कोई भी, चाहे वो इसके लिए मुश्किल हो रही है, वो भी ये ना सोचे कि मैं पीछे रह गया, मुझे क्या मिला, नहीं, जो इसमें आसानी पाता है, जिसको ये आ जाता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, उसको भी अजर मिल रहा है, कोई इससे खाली हाथ नहीं जाता। जो इसकी मजलिस में आ गया इसको सीखने के लिए, वो भरी हुई झोलियां लेकर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान कहेगा ए रब इसको मुजय्यन कर दे, नहीं इसको सजा दे, तब इसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा ए रब इसको सजा दे तो इसको इज्जत वाले हुल्ले पहनाए जाएंगे, यानी कपड़े इज्जत वाले पहनाए जाएंगे। फिर कुरान कहेगा ए रब इससे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। फिर उस शख्स से कहा जाएगा कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। तो ये कुरान इस तरह से उस दिन इज्जत दिलाएगा, इस तरह से उस दिन सिफारिश करेगा कि अल्लाह इससे राजी हो जा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के पेट में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है, वो वीरान दिल है जिनके दिल में कुरान नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा जिक्र नहीं कर सका, मुझसे दुआ नहीं कर सका, मैं उसको दुआ करने वालों से भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, कि अगर आपको इतना वक्त कुरान सीखने में पढ़ने में इसी के साथ आपकी मशगूलियत लगी हुई है, इसी के अंदर आप मसरूफ है, तो याद रखें जो लोग दुआएं मांग रहे हैं उनसे भी ज्यादा अल्लाह ताला आपको अता करेगा कि इस बंदे को दुआ मांगने की भी फुर्सत नहीं मिल रही इस कुरान में मशगूलियत की वजह से। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुआएं मांगने वालों से भी ज्यादा मैंने इसको अता कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह की मखलूक में कुछ लोग ऐसे हैं जो अहलुल्लाह है, अल्लाह के अहल हैं, समझे, अल्लाह के अहल, जैसे होता है ना किसी के अहल है, किसी की फैमिली है। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल कुरान, वो अहलुल्लाह है और अल्लाह के खास बंदे हैं, खास बंदे। तो आप अल्लाह के स्पेशल बंदों में शामिल हो जाते जब आप कुरान वाले बन जाते। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया जो भी ये पसंद करता है कि उससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें, आप पसंद करते हैं कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें? उन्होंने फरमाया कि जो ये चाहता है ना कि उससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें तो वो गौर करे कि अगर वो कुरान से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और फिर अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसहफ में कुरान, यानी इस कुरान में देखे बगैर पढ़ने का अजर 1000 दर्जे है और इस कुरान को देख के पढ़ने का अजर 2000 दर्जे है, डबल अजर है। सुभान अल्लाह। फिर देखें जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं वो भी इस हदीस को जरा गौर से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने बेटे को नाजरा कुरान पढ़ाया तो उसके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने उसको जुबानी कुरान पढ़ाया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको ऐसी सूरत में उठाएगा कि उसके, सुभान अल्लाह, उसकी सूरत ऐसी होगी जैसे 14वीं रात का चांद। और उसके बेटे से कहा जाएगा कुरान पढ़ो, और जब वो एक आयत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके बाप का एक दर्जा बुलंद कर देगा, हत्ता कि उसका बेटा तमाम कुरान पढ़ लेगा। और फिर इसी तरह एक शख्स ऐसा था कि जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि एक जगह से गुजरे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक कब्र में अजाब हो रहा है, और उन्होंने फिर देखा कि कुछ अरसे के बाद वो दोबारा गुजरे तो वहां पे अजाब की जगह अब उसके ऊपर रहमत हो रही है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल फरमाया कि या अल्लाह ये किस तरह, जब मैं पहले गुजरा था तो यहाँ पे अजाब हो रहा था इस कब्र वाले को, और अब जब गुजरा हूँ तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। तो उनको बताया गया कि जब ये बंदा फौत हुआ तो इसकी बीवी हामिला थी, उसकी बीवी हामिला थी, और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जब बोलने के, सीखने के, समझने के काबिल हुआ तो उसकी माँ ने उसको अल्लाह के दीन सीखने के लिए बिठा दिया, और जब इसने पहली दफा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आई कि मेरे बंदे का बच्चा जमीन के ऊपर मेरी हम्द बयान करे, मेरी सना करे, मेरा नाम ले, और मैं जमीन के नीचे उसको अजाब दूं। तो अल्लाह ताला ने उसके अजाब को दूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उसमें बहुत खैर होती है, बहुत खैर होती है, तो खैर आपके घर की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि आज आज से आप कुरान पाक के तालिब इल्म बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कुरान मजीद की एक आयत को कसदन सुना उसके लिए एक नेकी को दुगना करके लिखा जाएगा, और जिसने इसकी तिलावत की वो कयामत के दिन इसके लिए एक नूर हो जाएगी, नूर बन जाएगी इसकी तिलावत। तो अब जब आप कुरान पाक को पढ़ने के लिए आए हैं तो उसके आदाब में यही है कि आप बावजू होके आए, कोशिश यही होनी चाहिए कि गुसल करके आए, मुंह को हर किस्म की बदबू से अच्छी तरह साफ कर लें, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल ना करें कि जो यानी जैसे कोई अगर कच्चा लहसुन है या प्याज है या इस तरह की चीज खा के फिर उसके बाद कुरान पढ़ने बैठ गए, क्योंकि फरिश्ते कुरान की मजलिस में हाजिर होते हैं और फरिश्तों को बदबू से तकलीफ होती है, उनको खुशबू अच्छी लगती है। तो आपकी जगह भी साफ होनी चाहिए, आपको खुद भी साफ सुथरा होना चाहिए, और जब जैसे जैसे हम कुरान पढ़ें साथ साथ आप जो आयात ऐसी आती जाए जिनमें कोई अल्लाह ताला के अजाब की बात हो, कोई कहर की बात हो, कोई उसकी गिरफ्त की बात हो, तो अल्लाह ताला से उन ऐसे अजाबों से अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए, और रोना आए अल्लाह के खौफ से तो रोना चाहिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ते हुए रो, अगर रोना ना आए तो कोशिश करके रो, रोना आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में उन लोगों की तारीफ फरमाई है जिनको पहले इल्म दिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल लदीना उतुल इल्म मिन कबलिही इदा युतला अलैहिम यखरूना लिल अज़कान सुज्जदा, बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया जब इन पर इस कुरान की तिलावत की जाती है तो वो थोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं सुभान रब्बिना, पाक है हमारा रब, बेशक हमारे रब का वादा जरूर पूरा होने वाला है। वह यखरूना लिल अज़कान यबकून, और वो थोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते हैं, रोते हुए वह यज़ीदुहुम खुशूआ, और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह जब कुरान पाक में कोई ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह की रहमत की बात हो, मगफिरत की बात हो, तो अल्लाह ताला से उसकी रहमत का सवाल करें, उसकी मगफिरत का सवाल करें। इसी तरह जब अल्लाह की अजमत की आयत पढ़ें तो सुभान अल्लाह कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि आपको कोई भी ऐसी आयत जो आपके ऊपर बहुत दिल को असर करे, दिल को छू जाए, तो उसको जरूर हाईलाइट कीजिए, उसको हाईलाइट करें ताकि आप इंशाल्लाह देख लें, और जो आपके उस वक्त के जज्बात हैं उनको भी लिख लें उस वक्त। ये आपको इंशाल्लाह फायदा देगा, कभी आप कुरान खोलेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने यहाँ पे ये मेरे इस वक्त जज्बात थे जब मैंने पहली दफा पढ़ा था। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।